मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मंदिर के अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया भगवान का गुणगान करने के लिए। और आप सब लोगों का भी स्वागत है आज सुबह की क्लास में। तो आज हम लोग जो सातवां स्कंद है उसका जो पहला अध्याय है, अध्याय का नाम है समदर्शी भगवान, उसका आखिरी श्लोक है 48वां श्लोक, वो लेंगे हम लोग। इस तरह से है, श्री युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासीन महात्मनि तूहि मे भगवनेन प्रहलादस्य च्युतात्मता। शब्दार्थ, श्री युधिष्ठिर उवाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, विद्वेषः घृणा या द्वेष, दैते अपने प्रिय, पुत्रे पुत्र के लिए, कथम किस प्रकार, आसीत हा महाआत्मनि महान आत्मा प्रहलाद, ब्रूही कृपया कहें भगवान ये श्रेष्ठ मुनि, येना जिससे प्रहलादस्य प्रहलाद महाराज की, अच्युत अच्युत से आत्मता आत्मीयता या अत्यधिक आसक्ति। अनुवाद, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया यह मुझे बताएं। तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य, कृष्ण के सारे भक्त अच्युतात्मा कहलाते हैं क्योंकि वे प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्युत का अर्थ है कभी चूक न करने वाले भगवान विष्णु, क्योंकि उनका हृदय सदैव अच्युत है। चूंकि भक्तगण अच्युत से जुड़े होते हैं अतः वे अच्युतात्मा कहलाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत समदर्शी भगवान शीर्षक प्रथम अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री लभोवाद की,
हरे कृष्णा। तो ये कथा के बीच में कथा चल रही है, जो अध्याय है उसका नाम है समदर्शी भगवान। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज जब कथा कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, तो उनको वो कथा सुनाते हैं जिसमें जो वृत्रासुर की कथा है छठे स्कंद में। तो वृत्रासुर में भगवान जो है वो इंद्र का पक्षपात करते हैं। इंद्र को कैसे है कि तुम वज्र लेके आओ, और वृत्रासुर का वो वध करते हैं। तो दीति जो है, दीति बहुत गुस्सा होती है कि ये भगवान ने पक्षपात किया है। तो उसी के लिए परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं भगवान से, सुखदेव गोस्वामी से, कि भगवान कैसे पक्षपात कर सकते हैं? भगवान तो सब जीवों के पिता है, अहम बीज प्रदा पिता, भगवान से तो सारे जीव आए, तो भगवान पक्षपात कैसे करते हैं? ये समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षित महाराज। तो उसका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी, और उत्तर देते देते फिर वो उदाहरण देते हैं युधिष्ठिर महाराज का, कि कैसे राजसूय यज्ञ में नारद मुनि जी से भी युधिष्ठिर महाराज ने यही प्रश्न पूछा था, जब शिशुपाल जो है वो भगवान के शरीर में विलीन हो गया, इतना ईर्ष्या करता था, बचपन से ईर्ष्या करता था। पहला शब्द जो उसने बोला वो भी भगवान के अगेंस्ट ही बोला उसने। ऐसा व्यक्ति जो है वो उसमें विलीन हो गया भगवान में, और इस तरह से वो उदाहरण देते हैं जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं। तो फिर वो चर्चा शुरू हो जाती है नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज की चर्चा चलती है, तो फिर उसमें बताते हैं नारद मुनि जी कि कैसे ये दोनों जो हैं ये जय विजय हैं और कैसे ये गिर गए, वो कैसे कैसे इन्होंने, फिर इन्होंने बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु के रूप में इन्होंने अपने प्रहलाद महाराज को, पीछे बता रहे हैं इस श्लोक में कि कैसे इन्होंने कष्ट दिया अपने बेटे को। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का महान भक्त था, मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए। ये जो बात जो है युधिष्ठिर महाराज को समझ नहीं आती, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हे नारद मुनि, हे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? क्योंकि उस जमाने में ऐसा होता नहीं था। आपको तो लग रहा होगा ये क्या बड़ी बात है, यहाँ तो सारे पुत्र जो है पिता के लिए केस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पिता पुत्र को मारने के लिए तैयार है, इसमें क्या बड़ी बात है, क्या अजीब सा प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। लेकिन उस समय नहीं होता था ऐसे, उस समय की बात है ना ये ना, जब युधिष्ठिर महाराज भी थे तो युधिष्ठिर महाराज द्वापर युग में भी ये नहीं था। देखो कितना प्यार था भाइयों में, कोई भी जो माँ है अपने बच्चे को गर्भ में नहीं मारती थी, है ना। आजकल तो गर्भ में ही मार देते हैं, बाद की बात तो छोड़ो, बाहर ही नहीं निकलने देते उसको, सूर्य की किरण ही नहीं नजर आने देते, है ना। तब नहीं होता था ऐसे, पति पत्नी को अलग नहीं किया जाता था, नहीं तो क्या उसमें अकल नहीं थी कंस में कि देवकी को अलग कारागार में रखे और वसुदेव को अलग कारागार में रख दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहां से आएगा आठवां पुत्र, नहीं। पर ये सोचा नहीं जाता था, सोचो जरा आप दिमाग लगाओ कहां डिग्रेड सोचो। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं हमें सोचना चाहिए कि कैसी डिग्रेडेड अवस्था में हम रह रहे हैं जिसको हम नॉर्मल मानते हैं। ये तो नॉर्मल है जी, कॉमन है जी, ये तो आप सोचो, पति पत्नी को अलग रखने का विचार ही नहीं आता था। कंस जैसे राक्षस के मन में भी ये विचार नहीं आता था कि पति और पत्नी को अलग कर दो, और उसके मन में विचार नहीं आया कि गर्भ में हत्या कर दो, मार दो इसको, निकल नहीं मत दो, मार दो इसको, गर्भ में हत्या कर दो इसको, नहीं। वेट किया, जब वो बाहर आया बच्चा तब मारा उसको। और आजकल कितना बुरा हाल है, मां खुद ही अपने बच्चे को पेट में उसका हत्या कर देती है ना, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। तो इसीलिए ये प्रश्न लग सकता है कि आपको असंगत लगे कि ये प्रश्न पूछने की क्या जरूरत थी, तो उसका वातावरण बहुत अलग था। तो इसलिए जो है युधिष्ठिर महाराज ये पूछ रहे हैं प्रश्न नारद मुनि से, तब नारद मुनि जी अब पूरी कथा कहेंगे। अब आगे आपको जो अध्याय है दसवें अध्याय तक अब ये कथा चलेगी। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग कथा, जो आप जानते ही हैं, नरसिंहा भगवान और प्रहलाद महाराज की कथा आपको सुनने को मिलेगी। अब वो पूरी डिटेल में कथा बताएंगे कि कैसे जो है भगवान समदर्शी होते हुए भी अपने भक्तों के प्रति जो है वो वत्सल हैं। तो ये ऐसे समझा जा सकता है ना कि जैसे देखिए, मतलब ये हम क्योंकि ईर्ष्या हमारे मन में है, इसलिए हम देखते हैं कि भगवान में हम पक्षपात करते हैं, इसलिए हम भगवान में भी देखते हैं कि वो पक्षपात करते हैं। भगवान पक्षपात क्यों करेंगे, भगवान तो समदर्शी हैं। भगवान तो इन पक्षपात क्यों होता है, गुणों के कारण। इसमें बहुत अच्छा आपने पढ़ा होगा पीछे, बहुत अच्छा समझाया है, जो सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि कैसे जो है जीव जो है वो सतोगुण तमोगुण रजोगुण इसके अंडर रहता है, इस कारण से उसमें ये ईर्ष्या द्वेष ये सारी चीजें आती हैं। तो भगवान तो इनसे परे हैं, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है वो तो आसमान में चमक रहा है, लेकिन कोई अब अपने घर में सारे खिड़की सारे दरवाजे बंद करके उसमें काले पर्दे लगा दे, है और उसके घर में अंधेरा है, रात सुबह 12 बजे भी, रात के 12 बजे हुए हैं उसके, तो ये सूर्य का कसूर है क्या? और कहे देखो सूर्य देवता जी कृपा नहीं कर रहे मेरे ऊपर, तो मूर्ख है ना वो, भाई सूर्य तो चढ़े हुए हैं सब पे कृपा कर रहे हैं, तेरे पे क्यों नहीं कृपा कर रहे? इसी तरह से कई लोग जो है वो ना समझते हुए इसलिए कहते हैं भगवान की उसके ऊपर बहुत कृपा है, मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई, कृपा होगी तो हम भी आएंगे मंदिर, हम भी जप करेंगे, हम भी दीक्षा लेंगे, हमारे पे कृपा नहीं हो रही भगवान की। कृपा भगवान तो समदर्शी है, भगवान के तो सब बच्चे हैं, भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे? तुम पात्र नहीं हो ना, हमें पात्र बनना है, तो इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी हमें। हम ईर्ष्या करते हैं, ओ देखो उस भक्त पे बहुत कृपा हो गई है, कृपा हो गई है क्योंकि वो डिजर्व करता है। और हमें प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं कि हमें भक्तों की प्रशंसा करनी है, भक्तों का हमें गुणगान करना है, क्योंकि ये कृपा उसको मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो पात्र है, वो कृपा ले रहा है, उस तरह से वो बिहेव कर रहा है। अगर हम भी बिहेव करेंगे वैसे, उसने अपने सारे खिड़की दरवाजे खोल के रखे हुए हैं, तो रोशनी आ रही है खूब, उसने कोई पर्दा, काला पर्दा, पीला पर्दा कोई नहीं लगाया हुआ, सारे दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल, जैसे देखो यहां आ रही है। अब यहां तो कोई लाइट नहीं जलाई हुई आपने, कोई लाइट जल रही है, लेकिन आप इस घर में जाओ या उस घर में जाओ, देखो उनके घरों में लाइटें जल रही होंगी इस वक्त, जाके देखो क्यों, वो पर्दे क्यों है, इतने मोटे मोटे पर्दे लगाए हुए हैं, सूर्य को तो आने ही नहीं देते अंदर, सूर्य भगवान है वो भी, नारायण है, सूर्य नारायण भगवान है, आने ही नहीं देते अंदर, तो नारायण भगवान का थोड़ा कसूर है इसमें, भगवान तो समदर्शी है। तो इसलिए हमें पात्र बनना है, हमें योग्य बनना है, और अगर हम योग्य बनेंगे तो भगवान कृपा करने को तैयार है। और योग्यता का एक सबसे बड़ा लक्षण यह है कि हम ईर्ष्या नहीं करें, है ना, ईर्ष्या ही है जो हमें इस संसार में लाए हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसी कारण से भगवान की सृष्टि, भगवान के लोगों से ईर्ष्या करते हैं। और ईर्ष्या जो है ये ऐसी सूक्ष्म चीज है कि हमें पता नहीं लगता कि हम कर रहे हैं, बड़ी सूक्ष्म है ये। तो इसीलिए इससे कैसे हम बचें, इसीलिए हम भगवान की सेवा करें। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के प्रति जो हमारी ईर्ष्या है वो खत्म होगी। इसलिए बहुत जरूरी है सेवा में लगना। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे हमारी ईर्ष्या जाएगी नहीं। तो ये सारे चैप्टर का नाम इसलिए समदर्शी भगवान रखा है कि भगवान जो है वो समदर्शी हैं। अलग अलग तरह से इसमें बताया जा रहा है, अलग अलग उदाहरण दिए हैं, जैसे राजसूय यज्ञ का भी पूरा उदाहरण दिया गया, कैसे राजसूय यज्ञ में जो शिशुपाल जो है, शिशुपाल और दंत वक्र जय विजय उस रूप में आए। भगवान तो कितने दयालु हैं, उन्होंने उसको भी देखो मुक्ति प्रदान की। और एक जगह पे यहाँ पे जो नारद मुनि जी हैं वो कह रहे हैं, बड़ी अलग सी बात कह रहे हैं, सुनिए है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें नारद मुनि जी कह रहे हैं कि सुनो नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से, ऐसा मेरा विचार। नारद मुनि जी कह रहे हैं कि भगवान से जो शत्रुता करता है उसमें ज्यादा तल्लीनता हो जाती है। तो इसका मतलब नहीं कि हम शत्रुता करें, लेकिन वो एक पॉइंट बता रहे हैं, समदर्शी भगवान का एक पॉइंट बता रहे हैं कि भगवान समदर्शी हैं। क्योंकि जैसे शिशुपाल जो है उसको क्यों बाद में जो है भगवान के शरीर में एंटर कर गए, क्यों? क्योंकि वो दिन रात भगवान के बारे में सोचता रहता था, दिन रात चाहे नेगेटिव सोचता था, भगवान के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है, है ना। कैसे उदाहरण देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे जैसे एक मिस्त्री है, मिस्त्री वो जब फ्रिज में बिजली लगाता है तो ठंडा आग बोल लेता है, या एसी में, या एसी में लगाओ बिजली तो ठंडा देती है आपको, वही बिजली हीटर में लगाओ तो आपको गर्म देगी। उल्टी चीजें हैं ना दोनों, एक ठंड और हीटर गर्मी अलग अलग है, लेकिन एनर्जी तो वही है। इसी तरह से भगवान से जब हम जुड़ते हैं, किसी भी तरह से हम जुड़े, उनके लिए नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो उसी तरह से है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि भगवान बहुत पावरफुल है, उनसे जैसे भी जो जुड़ता है वो ऑस्पिशियस ही है, वो कल्याणकारी है उसके लिए। तो इसीलिए यहां पे बता रहे हैं, क्योंकि वो इतना तल्लीन था शिशुपाल, जो इतना तल्लीन था, इतनी गंभीरता से, इतना इंटेंसली भगवान के बारे में सोच रहा था, चाहे वो शत्रुता के रूप में ही सोच रहा था, इसीलिए भगवान ने उसको ये मुक्ति प्रदान की। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम भगवान की सेवा करें बहुत तल्लीनता से करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी सेवा है, प्रभुपाद जी ने कहा, आउट ऑफ ऑल द सर्विसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज चैंटिंग योर 16 राउंड्स अटेंटिवली एवरी डे। जो भी सेवा है, जैसे पुजारी जी की सेवा है और कितनी सेवाएं हैं, लेकिन सभी सेवाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है हरे कृष्णा। प्रभु जी नींद सो रहे हैं, आप आगे आओ, आगे आपको आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आके बैठो, पास आके बैठो यार। तो क्या कहा मैंने, आपने सुना, ध्यान चला गया इधर उधर। प्रभुपाद जी ने बोला कि जो सारी सेवाएं हैं, चाहे प्रचार की सेवा है, चाहे ये पुजारी की सेवा है, चाहे कोई भी सफाई की सेवा है, बीबीटी की सेवा है, आउट ऑफ ऑल द सर्विसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेवा है चैंटिंग यूर 16 राउंड्स अटेंटिवली। जो हमारे ये 16 माला है, 16 माला जप है, इसको हम ध्यान पूर्वक करें डेली। ऐसा नहीं कि आज हमने 12 माली किए हैं, कल 4 माला कल करेंगे, बोगस है वो। ऐसा होता है कभी, आज आपने, आप वैसे रोज 4 रोटी खाते हो, आज 2 रोटी खाई है तो कल 6 रोटी खाएंगे, होता है क्या, कर सकते हो ऐसे? या आप आज फास्ट कर रहे हैं तो सारी रोटियां कल ही खा लेंगे, या एक हफ्ता भर फास्ट करते हैं एक दिन सारी खा लेंगे, होता है कभी? नहीं होता ना, शरीर के साथ तो नहीं ऐसा कर सकते। तो चैंटिंग के साथ कैसे कर सकते हो आप? वो भी हमें डेली जरूरत है। अगर हम भगवान के नामों का जप नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, इंपॉर्टेंट सेवा, तो हमारी वो कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी सेवा में, फिर वो चेतना नहीं रहेगी जो सेवा में चाहिए, जो हमें प्योर करेगी। तो बहुत तल्लीनता से हमें ये भगवान के नामों का जप करना है, और ये आसान नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे लिए भी आसान नहीं है, अपने को भी सुना रहा हूं, मैं आपको जब सुना रहा हूं अपने को भी सुना रहा हूं, यानी कि मैं आपको कह रहा हूं मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि मन जो है हमारा, मन शत्रु है हमारा, नहीं? ओ मन पापी अड़ियां करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नु, तो पंजाबी है ना, तो पंजाबी भाग में तो पंजाबी रहते हैं, तो बोल सकते हैं ना पंजाबी। इतना ये हठी है, मन पापी है, अड़ियां करता है ये, कृष्ण का नाम जपते ही इसको दुनिया भर की चीजें याद आ जाती हैं, दुनिया भर की। ओ जिथे होवे निंदा चुगली दौड़ दौड़ है जानदा, निंदा चुगली प्रजल्पा, इधर उधर की बात हो रही है, पॉलिटिक्स ये हो रहा है, वहां तो बाघ, अच्छा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ओ जिथे होवे कथा वार्ता ओथे पैर ना पांदा, ओ मैं कई बार समझाया तू छड़ दे लंबड़दारी नू, ये लंबड़दारी है, लंबड़दार लीडर बनाओ, मैं लंबड़दार, लंबड़दार समझते हो आप, लंबड़दार होता है चौधरी, चौधरी बना हुआ है, मैं देखो मेरी बात सुनो, छोड़ो इसको लंबड़दारी को। ओ तिया पुत्र बड़े लाडले कोट कोट गले लांदा, अपने मेरे बच्चे बड़े बड़े लाओ, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, वो बड़े लाडले हैं, वो उसका कुछ नहीं, वो दूसरे का पुत्र है, उसको जाने दो, मरने दो, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र जाना चाहिए डॉन बॉस्को स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में, और दूसरे बच्चे जाए कहीं भी जा रहे हैं, हमें क्या लेना देना उससे। ये मन के कारण है, मन है हमारा, जो हमारा शत्रु है। भगवान भी कह रहे हैं कि मन शत्रु है, और सबसे बड़ा शत्रु यह है कि भगवान का नाम नहीं लेना चाहता है। और अगर मन हमारा हमारे वश में आ जाता है, मन जीता जग जीता, तो सारा जग को जीत लेंगे हम। मन जीता जग जीता, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो हम पढ़ेंगे, इसका मन ही तो वश में नहीं है हिरण्यकशिपु का, और क्या है ये, तो क्या नहीं है इसके पास, हिरण्यकशिपु के पास क्या नहीं था। सारे इंद्र जो हैं, राजा इंद्र जो हैं, वो आगे पांव दबाते थे इसके, पता है आपको, हिरण्यकशिपु के आगे पांव दबाया करते थे राजा इंद्र। लेकिन उसको शांति नहीं थी, उसको शांति नहीं थी। उसका कारण क्या है, मन उसका कंट्रोल नहीं था, मन उसका वश में नहीं था। तो इसीलिए कहा जिसका मन वश में है वो कहीं पे भी रह के खुश रहेगा, कहीं पे भी रखो उसको, किसी जगह पे रखो वो खुश है, इसका मन वश में है। तो मन को वश में करने के लिए बहुत जरूरी है कि जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम जप करते हैं, जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो मन लगाएं उसमें, तभी तो मन ट्रांसेंडेंटल होगा। जैसे भगवान के नाम ट्रांसेंडेंटल है, ट्रांसेंडेंटल मतलब तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर है ये। भगवान जैसे ट्रांसेंडेंटल हैं, वैसे ही उनके नाम भी ट्रांसेंडेंटल हैं, दिव्य हैं, वो गुणों के अंदर नहीं आते। तो अगर हम गुणों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने मन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो मन को टच करें ना उसके साथ। मन हमारा टच ही नहीं करता, मन छूता ही नहीं है उन नामों को, तो कैसे ट्रांसेंडेंटल होगा। तो इसलिए हम जब करते रहते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, दस साल, पंद्रह साल, वो वहीं के वहीं, कोल्लू के बैल की तरह, कोल्लू का बैल देखा, चलता रहता है एक साल, दो साल, तीन साल, दस साल, सारी उम्र, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ता। मेहनत बहुत करता है बेचारा, सारी उम्र मेहनत करता रहता है, लेकिन था वहीं जहां से चले थे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये हम करें, और यही ज्ञान है। भगवदगीता में भगवान कह रहे हैं, ज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं कि अर्जुन को, उसमें बता रहे हैं नम्रता, संतान, पत्नी, घर से विरक्ति, गुरु का आश्रय, ऐसे कई पॉइंट्स बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ है ये ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। क्या मतलब, क्या मतलब इसका, क्या मतलब। तो उसमें जो बता रहे हैं भगवान, गुणों गुणों के बारे में बता रहे हैं, सारे गुण हैं, नम्रता का गुण होना चाहिए है, और दम्भहीनता, और गुरु आश्रय, गुरु उपासना, सारा वो बता रहे हैं। तो इसको ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान का मतलब ये है कि गुण आने चाहिए आप में, वैसे ज्ञानी होने को कोई फायदा नहीं है अगर गुण नहीं आए हमारे में। अगर हमारे में कोई इस तरह के गुण नहीं आए तो ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, ऐसा ज्ञान जो है वो बेकार है। वो बल्कि आपको, जैसे ज्यादा आप अगर फूड खा लो और पचाओ नहीं तो इंडाइजेशन हो जाता है ना, तो वो ही करेगा, वो नुकसान करेगा आपका, अगर हम उसको उसको गुणों के रूप में परिवर्तित नहीं कर रहे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इतने पोटेंट मूवमेंट में हैं, इतने पोटेंट आंदोलन में हैं, बिल्कुल कायाकल्प हो सकता है, कायाकल्प। और अगर हम वो, इसीलिए अगर हम अटेंटिवली करें, डिवोशनल सर्विस को बड़ी तल्लीनता से करें हम, जब एक, उसका मतलब ये है जो नारद मुनि जी उदाहरण दे रहे हैं शिशुपाल का, कि जो शत्रुता करता है वो ज्यादा, क्यों, क्योंकि बड़ी इंटेंसली वो शत्रुता करता था शिशुपाल, बहुत इंटेंसली, दिन रात भगवान के बारे में सोचता रहता था, दिन रात। तो हम भी, ये हमारा गोल होना चाहिए कि दिन रात हम भगवान के बारे में सोचें। तो उसके लिए उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जो हमें चैंटिंग प्रभुपाद जी ने दी है हरे कृष्ण महामंत्र की, इसको हम बहुत ध्यान से करें, इसके लिए हम बिल्कुल कोताही नहीं बरतें। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम देखते हैं कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी को जो भक्त लोग हैं वो इग्नोर करते हैं। गाड़ी में बैठे हुए जब करेंगे, बातें करते हुए जब करेंगे, और आप देखोगे जो लोग जो हैं ध्यानपूर्वक जब करते हैं वो फिर सारी सेवाओं में भी ध्यानपूर्वक रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है भगवान के नामों का जप ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि ये जप से हमारी सारी अनर्थ दूर होएंगे और सबसे और ये अपराध है अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते तो ये अपराध है। तो जब हम अपराध करेंगे तो फिर कैसे हमें जो नाम नाम प्रभु है कैसे हमें कृपा देंगे। तो ये पॉइंट्स हैं इसमें जो बताया है, आगे कथा तो आगे चलेगी। और प्रभुपाद जी जो एक बात बता रहे हैं, एक उन्होंने पॉइंट लिया है इस पर्पट में कि कृष्ण के सारे भक्त अच्युतत्मा आत्मा कहलाते हैं क्योंकि वे प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्युत का अर्थ है कभी चूक न करने वाले भगवान विष्णु। जैसे हमें भी कहते हैं ना अच्युत गोत्र से हैं, अच्युत मतलब कि च्युत नहीं होते, जो जो गिरते नहीं है कभी भी अपने पद से, कभी भी गिरते नहीं हैं। और हम भी उस तरह से हो सकते हैं अगर हम भगवान की पूर्ण रूप से शरण लें। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर लोहा है, लोहा लोहे को अगर आग में रखो हमेशा, आग में ही पड़ा रहे लोहा, तो वो भी लाल हो जाता है, वो भी लाल हो जाता है और वो भी जो है वो आग की तरह कार्य करता है, वो भी आग की तरह कार्य करता है। हालांकि लोहा है, आग की तरह कार्य करता है। इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से भगवान की शरण ली हुई है, जैसे श्री लघुबाद, वो भी अच्युत आत्मा है, वो भी गिरते नहीं है कभी भी अपने पद से, कभी भी नहीं गिरते क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ले रखी है। वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, सारे गुण उनमें भी आ जाते हैं, वो भी ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, उनको भी तमोगुण रजोगुण सतोगुण जो है वो विचलित नहीं करते। हमें तमोगुण रजोगुण सतोगुण विचलित, हम उनके प्रभाव में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि हमने पूर्ण रूप से भगवान के शरण मिली हुई, इसीलिए हम तमोगुण में आ जाते हैं, रजोगुण में आ जाते हैं, सतोगुण में आ जाते हैं। अभी जैसे पीछे बताया है कि काल जो है, काल तमोगुण रजोगुण सतोगुण बढ़ाता है ना, होता है ना, हमारे साथ भी होता है, कभी हमारा बहुत मन लगता है भक्ति में अच्छे कार्य हुए और कभी जो है हम भागा दौड़ी करना चाहते हैं सार, वो कभी मन करता है कुछ करो ही नहीं, नहीं सच बात है नहीं, इतना आलस आ जाता है कुछ मन नहीं करता क्योंकि काल जो है ना तमोगुण रजोगुण का प्रभाव, कभी वो काल के कारण तमोगुण का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, काल के कारण सतोगुण का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो ये जो है गुणातीत होना, गुणातीत होने के लिए क्या करेंगे, हम हमेशा भगवान के चरणों को अगर पकड़े रहेंगे तो ये चीजें हमें फिर विचलित नहीं करेंगी, इसके प्रभाव में नहीं आएंगे हम। तो अच्युत आत्मा, तब हम अच्युत आत्मा हैं, तब जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, सब लोग नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी ने स्पेसिफाई किया है कृष्ण के सारे भक्त अच्युत आत्मा कहलाते हैं क्योंकि वे प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हैं। चूंकि भक्तगण अच्युत से जुड़े होते हैं अतः वे अच्युत आत्मा कहलाते हैं। तो हमें जुड़े रहना है ना, तो जुड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान, जो भगवान कृष्ण के नाम हैं, इनकी हम पूर्ण रूप से शरण लें, बहुत ही ध्यानपूर्वक टाइटली इसको पकड़ें और अपना मन जो है इधर लगाएं। क्योंकि जब हम जब कर रहे हैं तो मन भाग रहा है सारी दुनिया में, वो जे मैं जानदा कोई ना मेरा प्रभु संग प्रीत लगांदा, है ना। आप जाने हो कि नहीं अभी तक जाने, तो कोई नहीं है आप, जे मैं जानदा कोई ना मेरा प्रभु संग प्रीत लगांदा, कथा वार्ता नित मैं जानदा प्रभु चरना जिंद लांदा, ओ नहीं चुकदा गठरी भारी नू, है कि नहीं, कितनी गठरी भारी उठा के घूम रहे हैं संसार का सारा बोझ, यहाँ पे संसार के बोझ को सिर पे उठा के घूम रहे हैं हम, ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, ये काम वो काम, है ना, टाइम नहीं है जी, कुछ पूछो जी आओ मंदिर, टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है, दुनिया भर के कामों के लिए टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं है, दुनिया के लिए पैसा है, भगवान के लिए पैसा नहीं है। कितना कितना खर्चा करते हैं लोग शादियों पे, ब्याहों पे, कहाँ कहाँ नहीं खर्चा करते है कि नहीं, लेकिन भगवान के लिए देने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है भगवान के लिए। वो जी बड़ा मंदा चल रहा है जी, बड़ा मंदा चल रहा है, भगवान के लिए मंदा हो जाता है, और कार्यों के लिए मंदा नहीं है, तो इसी कारण से फिर कष्ट पाते हैं। जो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, जो हमारे काम आने वाले हैं, उनको छोड़ के और हम जो है बेकार जो हमारी चीजें हैं ही नहीं जो जाने वाली हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, तो ये चुत के लक्षण है। तो हमें अच्युत बनना है, उसके लिए हमें अच्युत आत्मा बनने के लिए हमें जो अच्युत हैं भगवान श्री कृष्ण उनके लिए सब कुछ देना है, सब कुछ उनका है। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो गृहस्थ लोग हैं उनको अपनी इनकम का 50% भगवान को देना चाहिए। ये है भक्ति, ये भक्ति है गृहस्थों के लिए। भक्ति क्या है कि जो पैसा है उसका 50% भगवान की सेवा में लगाओ, ये है गृहस्थों के लिए भक्ति। तो ब्रह्मचारी क्या काम, ब्रह्मचारी तो बेचारा ब्रह्मचारी क्या करेगा, वो सन्यासी क्या करेगा, सन्यासी तो सन्यास ले चुका है क्या करेगा, वानप्रस्थी क्या करेगा, गृहस्थी जो है धंधा कर रहे हैं, गृहस्थी तो कमाई कर रहे हैं, उनको अपनी कमाई का 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये भक्ति है उनके लिए, ये उनके लिए भक्ति है। रूपा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, रूपा जी कह रहे हैं, है ना, कह रहे हैं कई जगह कह रहे हैं, सच बात है। तो ये करना चाहिए, अगर ये हो तो देखो समाज में कितनी खुशहाली, कितनी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। पैसे तो खर्च करते हैं हम, वही पैसे हम डॉक्टरों को दे आते हैं। मेरे अपना अनुभव है, दूसरा मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं फुल टाइम ज्वाइन नहीं किया था मैंने, अपने में प्रैक्टिस करता था लेकिन प्रचार भी करता था, तो दिसंबर का महीना था तो किताबें दी इन्होंने मंदिर से, किताबें मिली भाई भगवद गीता बांटो, तो मैंने भी किताब, ये बहुत पुरानी बात है, ये बात है 19 रोहिणी की बात है, तब कोई मंदिर नहीं था कुछ नहीं, ये बात है 1989 या 90 की बात है। तो वो किताबें मैं सामने जो घर के सामने था, घर में ही मेरी प्रैक्टिस थी, घर के सामने जो था उसके चला गया दोपहर को, जब क्लिनिक बंद हुआ दोपहर को घर गया उसके, मैंने कहा ये किताब ले लो, 15 रुपये की किताब होती थी, जब भगवद गीता होती थी 15 रुपीज़ की ओनली, तो मैंने कहा ये ले लो 15 रुपये की किताब है ले लो। ओ जी मेरे भाई साहब घर में नहीं है, भाई साहब घर में आएंगे वो देंगे सोचेंगे, ठीक है जी रख लो किताब रख। तो दूसरे दिन वो सुबह सुबह आया और वापस कर गया, जी नहीं चाहिए जी हमें, मेरे घर में आया वापस कर गया, नहीं चाहिए। अब घर में आके वापस करेगा तो मैं फोर्स क्या करता हूँ, तरीका अच्छा सोचा ना, घर में दिया जाके पड़े नहीं रहने। आज शाम को फिर आ गया मेरे पास, मैंने कहा अब क्या हुआ जी, भगवद गीता तो वापस कर गए थे आप सुबह। वो नहीं जी वो मेरी भाभी की पेट में दर्द हो गया है, जरा डॉक्टर साहब चलो जरा आप, और तो कोई डॉक्टर है नहीं कॉलोनी में, आप चलो 9 बजे थे शायद रात। मैंने कहा पकड़ो ब्रीफ केस पकड़ो मेरा, ब्रीफ केस पकड़ा उसने, चला बड़े आदर से लेके गया, आदर से लेके गया, मैंने जाके एक इंजेक्शन लगाया, 2 गोलियां दे दी, मेरा शायद 5 रुपये भी खर्चा नहीं आया होगा जहाँ तक मुझे याद है, सस्ता जमाना था। तो फिर ब्रीफ केस लेके वापस आया, डॉक्टर साहब क्या सेवा करनी है, मैंने कहा 50 रुपये दे दो, दे दिए निकाल दो। वही मैं एक बंदा था, 15 रुपये में मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा था, 15 रुपये मंदिर में देने थे मैंने, मैंने क्या करना था, वो भगवद गीता मंदिर की थी, वो 45 रुपये दे गया मुझे मजे से, नो प्रॉब्लम है कि नहीं। अपना मैं अनुभव बता, डॉक्टर को दे देंगे जाके 1,00,000 रुपया दे देंगे, लाख आजकल आप हॉस्पिटल में जाओ 1,00,000 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं, ऐसे एक छोटा सा ऑपरेशन कराना ना कहेंगे जी 1,00,000 रुपये, इसलिए मेडिक्लेम करा के रखो, मेडिक्लेम बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिक्लेम वाले डॉक्टरों को जाके कहते हैं कि मेडिक्लेम के लिए को सबको को, क्योंकि आपने पैसे ज्यादा लेने हैं, ये तो दे नहीं सकते, हम देंगे आप, सारी षड्यंत्र चला हुआ है और हम इस षड्यंत्र में हमारे भी हम भी उसमें मतलब धोखे जा रहे हैं, हम भी उसके पार्ट हैं और हम सोचते हैं बड़े खुश हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं, देखो वो हरे कृष्णा वाले आए थे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे मेंबर बन जाओ, नहीं बने देखो, बहुत स्मार्ट मूर्ख, और तेरे डॉक्टरी का बिल बचाने वाले थे वो, मूर्ख है तू। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप लोगों को बताओ ये जाके कि आपके लिए भक्ति है, धन दो अपना 50% धन दो, कि धन से आ सकती, जो आप सोच रहे हो कि धन मेरे को सब कुछ दे देगा, हैं? धन धन से क्या है, धन से आप बेड खरीद सकते हो, मान लो आपने 5,00,000 रुपए का बेड खरीद लिया, पैसा है आपके पास 5,00,000 का बेड, ओ अल्ट्रा मॉडर्न एवरी चीज, और जब सोए हो तो नींद नहीं आ रही, क्या करोगे, इधर पल से फायदा क्या हुआ पागल, फायदा क्या हुआ, बेड किस लिए खरीदा था? इससे अच्छी जो जमीन है वो अच्छे है तेरे से, बड़े बहुत अच्छे है जो जमीन में गहरी नींद में सो रहे हैं मूर्ख। ये बताओ लोगों को जाके, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा पैसा पैसा। कैसे पैसा थोड़ा खुशियां खरीदेगा तुम्हें? पैसा सुख की चीजें ला सकता है, सुख नहीं ला सकता। दोनों में फर्क है। सुख की चीजें जो है आपको सुख नहीं ले सकती। लोग सोचते हैं कि सुख की चीजें इकट्ठी कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। गलत, बिल्कुल गलत है। सुख एक अलग वस्तु है, उसका सुख की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है परम सुखी हो सकता है। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में श्री वो कोला बेचा श्रीधर के बारे में पढ़ते हैं। क्या था उसके पास? ना घर था, ना कोई बर्तन था, ना कोई कपड़े थे, कुछ नहीं था उसके पास। कितना सुखी था चैतन्य महाप्रभु। भगवान खुद आ रहे हैं उसके साथ, लीला कर रहे हैं उसके साथ, खेल रहे हैं, और उसका जो टूटा हुआ गिलास था उसमें पानी पी रहे हैं भगवान। कितना कितना आनंद में था वो, सोचो आप कि भगवान उसके साथ लीला करके आनंद ले रहे हैं, इतना आनंद में था वो। तो सुख की सुविधाएं से हमें सुखी नहीं होंगे हम, हमें ये समझना है। बहुत अच्छा है, अभी असली लीला तो मैंने छुई नहीं है, क्योंकि आपको आनंद मिलेगा जब ये दूसरा चैप्टर शुरू होगा। बहुत सुंदर लीला है भक्त प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु की। बहुत अच्छी लीला है ये, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मिलेंगे हमें कि कैसे जो है नरसिंह देव जो है आते हैं अपने भक्त प्रहलाद के लिए। सारी वो बातें जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं कि कितने बड़े भक्त बने, कैसे बने, सब इसका आंसर देंगे। तो मैं यहीं विश्राम देता हूँ। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो और चर्चा करेंगे। 5 मिनट है, 9 बजे तक है क्लास, कब तक है बोलिए? 9 बजे तक ना है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कोई प्रश्न उत्तर है तो पूछिए। अभी हम वहाँ गए द्वारका, आपको पता ना द्वारका का भी उद्घाटन होने वाला है। द्वारका जो हमारा मंदिर है, आप जानते हैं द्वारका में मंदिर बन गया है, पता है आपको? सबको पता है? कितने लोगों को पता है कि द्वारका में मंदिर बन गया है? गुड। तो उसका उद्घाटन है 16 तारीख को। तो ये पिछले वहाँ पे संडे को प्रोग्राम होता है, वहाँ पे अभी मंदिर नहीं बना, लेकिन इतनी हैरानगी की बात है, उनका इतना प्रचार इतना सशक्त है, वहाँ 800 लोग आए हुए थे टेंट में गर्मी में। इस पिछले संडे को 800 लोग वहां पे बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। तो सशक्त प्रचार है उन लोगों का। कैसे सब घर घर में फोन करते हैं, घर घर में SMS भेजते हैं, क्या करते हैं वो, तो हमें सीखना चाहिए। उन लोगों को भी करना चाहिए कैसे जो लोग जो हैं आए, क्योंकि लोगों को जरूरत तो है इसकी, लोगों को जरूरत है, लेकिन समहाउ वो इस चीज़ को ये पकड़ नहीं पा रहे कि यही चीज़ है जो हम ढूंढ रहे हैं। लोग तो ढूंढ तो इसी को रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लो सुबह से शाम तक पैसा कमाने में लगा हुआ, वो यही सोच रहा है ना कि पैसे से उसको आनंद मिलेगा, पैसे से खुशी मिलेगी उसको, है ना? अगर उसको पैसे के बिना ही आनंद मिल जाए, खुशी मिल जाए, तो क्यों दौड़ेगा वो पैसे के पीछे? नहीं। जैसे 5-6 लोग गाँव में बैठे हुए थे और हंसी करते थे, हाँ हाँ वो हाँ, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो एक शहर से बंदा आया, उन्होंने कहा क्या गवार हो, सारा समय खराब कर रहे हो, ऐसे पढ़ो लिखो, कुछ पढ़ने लिखने का समय, कुछ पढ़ो लिखो। कहता जी पढ़ने लिखने के बाद क्या हो जाएगा? पढ़ने लिखने के बाद अच्छा हो जाएगा, और नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, जगह पर तनख्वाह मिलेगी अच्छी, फिर क्या हो जाएगा? अब फिर शादी करना, शादी अच्छी लड़की मिल जाएगी, फिर बच्चे होंगे, बच्चों को अच्छा बनाना, बड़ा बनाना बच्चों को, उनकी शादी करना। कहते हैं फिर क्या? फिर खुश हो गए आप सब कुछ करके? तो कहते हैं हम पहले खुश हैं, हमें क्यों आप ऐसे मुसीबत में डाल रहे हैं? सोचने की बात है ना? तो उनको बताओ ये इतना मुसीबत डालने की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। वो सोच रहे इतनी मुसीबतें चाहिए तभी खुश रह जाएंगे हम, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है खुशी रहना। सच बात है। देखो ना भक्तों को, देखो इनके पास क्या है। तो तुमने कृष्ण प्रभु को कितना बैंक बैलेंस है मुझे? आप अकाउंट नंबर ही नहीं होगा शायद, ज्यादातर ब्रह्मचारियों को तो अकाउंट नंबर ही नहीं होता, बैंक बैलेंस कहां से आएगा? 2 या 4 धोती कुर्ता होंगे, तो उसी में नाचते रहते हैं, देखो नाचते रहते हैं, इतना ऊंचा ऊंचा नाचते रहते। तो अब उदाहरण सामने है, खुश रहने के लिए इतनी सुविधाओं की जरूरत नहीं है, इतना मुसीबत करने की जरूरत नहीं है, खुश रह सकते हो आप सिंपली अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, बस आनंद ही आनंद है, फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की। लेकिन ऐसा वातावरण, ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है टेलीविजन के जरिए, सबसे गंदा जो है ना वो टेलीविजन। सच में बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो भक्ति में आगे बढ़ना तो आज से टेलीविजन को उठा के बाहर फेंक दो, चाहे 1 लाख रुपए का हो, अगर बाहर फेंकते हुए दिल को हार्ट अटैक ना हो जाए तो चलो उसको बंद तो कर दो कम से कम। उसका वो जो है टूटा बॉक्स, क्या होता है टूटा बॉक्स जिससे वो आते हैं प्रोग्राम आते हैं, क्या कहते हैं सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स जो होता है वो सेटअप बॉक्स को निकाल दो, कम से कम वो सेटअप बॉक्स नहीं होगा तो प्रोग्राम। ये सच में कह रहा हूं, सबसे ज्यादा एक्चुअली मैं तो कहता हूं प्रभुपाद जी अगर होते, प्रभुपाद जी अभी नहीं, वो नहीं तो 5 नियम बनाते, वो 4 नियम जब दीक्षा देते ना 5वां नियम टेलीविजन नहीं देखना, सच ये भी एक नियम होना चाहिए। इतना खराब कर रहा है, उसका बाप क्या है, उसका बाप है इंटरनेट, उसका बाप टेलीविजन का बाप आ गया, पहले तो सिर्फ टेलीविजन था, उसका बाप बहुत घोर वो इंटरनेट। अगर आप इन चीजों से फेसबुक, तो फेसबुक है आजकल, फेसबुक है सब, फेसबुक में यानी फिर और उससे कहां से कहां आप कहां, माया है ना, माया कैसे पता है, माया कैसे एंटर करती है, माया आपके जीवन में कैसे आएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, पता नहीं। जैसे मच्छर आता है ना, मच्छर आपको काटता है, आपका खून चूसता है, पता लगता है, आता है आराम से बैठता है, पता नहीं लगता, क्योंकि उसके जो वो होते हैं पैर होते हैं इतने गद्देदार होते हैं, आपको पता नहीं लगता बैठ गया, बैठेगा फिर उसने अपनी जो नुकीली सी वो पाइप सी है जिसने खून चूसना है वो डाल दिया आपके अंदर, वो चली गई तभी भी पता नहीं लगा, उसने पूरा खून चूस लिया आपका तभी पता लगा, जब वो उड़ जाएगा तो ओए होए बिजली हो रही है, ऐसी माया है। माया आती है बिल्कुल पता नहीं लगता, ठीक ठाक चल रहा है सब ठीक ठाक, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, घुस जाएगी अंदर, इन्फेक्ट कर देगी धीरे धीरे, फिर वो जो जैसे मलेरिया होगा मतलब फिर उसके वो जो इन्फेक्शन के सारे सिम्टम्स आएंगे, वो फिर देखा हुए इतना मुंह लाल हो गया, ये क्या हो गया, वो शुरुआत हुई थी उससे मच्छर। तो इसीलिए माया जो है बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उससे बचने का तरीका क्या है, उससे बचने का तरीका यही है कि हम लोग भक्तों का संग में रहें, हमेशा संग में रहें, और जो हमें ये चीज़ें बताई हैं इसको हम ध्यान से पालन करें, और ये जो आजकल के कलयुग के जो गुरु हैं, ये टेलीविज़न और ये इंटरनेट, इससे हम दूर रहें प्लीज़, ये माया है। आप एक एक बटन टिक करोगे फिर दूसरा टिक, फिर तीसरा टिक, पास वो टू 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 ले जाएगा आपको कहाँ से कहाँ, तो छोड़ो ना, शुरुआत ही मत करो। भगवान यही तो बता रहे हैं कि भगवद गीता में बोल रहे हैं कि ये जो ऐसी है आप माया ऐसे आती है आपके सामने कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, माया आएगी हाँ मुझे कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, देखो मैं आगे कंट्रोल कर सकती हूँ, और जब आप उसको कंट्रोल करने जाओगे तो आपको ही पकड़ लेगी वो, आपको पकड़ लेगी वो, तो दूर रहो उससे, उसको कंट्रोल करने का प्रयास मत करो, क्योंकि भगवान ही कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं कंट्रोल कर सकते उसको। माया के अध्यक्ष जो है, माया अध्यक्षेन प्रकृति सुएते सचराचर, माया के अध्यक्ष जो है भगवान है, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम माया से बचे रहे तो भगवान की शरण ले लो, बस माया से लड़ नहीं सकते आप, माया को नहीं जीत सकते आप, भगवान की शक्ति है वो, उसको कौन जीत पाया आज तक, कोई नहीं जीत पाया, सिर्फ भगवान है जो, तो उनकी शक्ति है, भगवान तो शक्तिमान है हाँ, लेकिन अगर हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो भगवान हरा देंगे उसको, भगवान की तो शक्ति है, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए कृपा करके मैं ये जरूर आपसे प्रार्थना करूंगा, ये टेलीविजन जो है इसको जरूर बाहर निकाल दो, क्योंकि टेलीविजन में प्रोग्राम जो है वो इतने कष्टदायी नहीं है, वो इतना आपका नुकसान नहीं करते जितने उसमें कमर्शियल्स हैं, वो नुकसान करते हैं। और आपको पता है ये जो टेलीविजन में प्रोग्राम बनाते हैं ना, ये आपके लिए नहीं बनाते, ये आप सोचो तो हमारे लिए बना रहे, नहीं, वो जो कमर्शियल देते हैं ना वो उनके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमें कमर्शियल कौन अच्छा, कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, ये अच्छा ये देंगे, क्योंकि वो दे रहे हैं ना पैसा, आप थोड़ा दे रहे हो, ये डूटा बॉक्स स्टॉक बोलते हैं क्या, सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स जो है ये जो है इससे क्या उनको होता है, इससे कुछ नहीं होता, वो तो लाखों करोड़ों रुपया देते हैं एडवर्टीजमेंट वाले, उनके लिए वो प्रोग्राम बनाते हैं, वो कैसा भी प्रोग्राम कहें, वो गंदा कहें, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं। आप पैसे दे रहे हो, ये लो ये प्रोग्राम दे दिया हमने, आप व्यूअर्स के दिमाग में कुछ भी हो उनको कोई लेना देना थोड़ा है। तो प्लीज ये टेलीविजन को घर से निकाल दो, आपके घर में बहुत शांति आ जाएगी, मैं सच बता रहा हूं। कोई प्रोग्राम मत देखो, नहीं जी हम तो आस्था चैनल देखते हैं सिर्फ। प्रभु जी संस्कार चैनल भी नहीं देखना चाहिए? अच्छा मैं तो सिर्फ न्यूज सुनता हूं, न्यूज तो सुननी चाहिए ना, कोई जरूरत नहीं है, वो सब बेकार। एक ही न्यूज को हजार हजार बार देंगे, और फिर आपको पता है जो आपको न्यूज की जरूरत है तो भगवान नहीं भेज सकते, भगवान के हजार हाथ है, हजार उनके नौकर हैं आपके पास न्यूज भेजने के लिए, भगवान भेज देंगे ना जिस चीज की आपको जरूरत है। जिसकी जरूरत ही नहीं है तो अच्छा है, नहीं पता लगे, खाम खा पता लगती है, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। टेलीविजन वाली सारी चीजें वो दे रही है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, सच बोल रहा हूं आप। वो सारी चीजें जो देते हैं कि वो बेकार की चीजें, आपके जीवन में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो देखते हो तो लगते हो वो ये मेरे जीवन में नहीं है, पता नहीं मेरा जीवन तो अधूरा ही रह जाएगा, ये चीज नहीं है मेरे जीवन में, ऐसे देते हैं एडवर्टीजमेंट। वो जीवन को चलाने की इतनी जरूरत थोड़ा है, अच्छा आपको भोजन प्रसाद मिल जाए, खाने को जगह मिल जाए, थोड़ी सी रहने के लिए दो चार कपड़े हो, अच्छा संग हो, भगवान की सेवा हो, सारा जीवन निकल जाएगा वजह से, क्या जरूरत है। वो जी यहां मकान होना चाहिए, वहां मकान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारी एडवर्टीजमेंट का फल है, वो चाहते हैं। तो प्लीज इसको निकाल दीजिए जीवन से, बहुत जीवन सुखी हो जाएगा आपका। तो अभी आपने प्रश्न पूछा ही नहीं, फिर 9:05 हो गए, फिर खत्म करें, ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जब कोई प्रश्न ना हो तो ये समझना चाहिए या तो आपको सारी बात समझ आ गई है या कुछ समझ नहीं आया है तो पूछे क्या है कि नहीं। नहीं या तो देखो परीक्षित महाराज भी प्रश्न पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछना अच्छी बात है, प्रश्न पूछना बुरा नहीं है, जो मन में प्रश्न आए पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अपना उद्धार करता है, वक्ता का उद्धार करता है, और सारे जो लोग और श्रोता है उनका उद्धार करता है, तीन लोगों का उद्धार करता है। यस अपने कृष्ण लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना बोल रही।
जैसे कि शिशुपाल बिल्कुल एब्जॉर्ब था, तो भक्ति में एब्जॉर्प्शन की बहुत महत्वता है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम सेवा करते हैं कुछ दिन, हमारा मन लगता है, जब तक सेवा नहीं लगती है फिर हम बोर हो जाते हैं, फिर हम कुछ दूसरा ढूंढते हैं। तो जो सब जैसे क्रियल होता है, शुरू शुरू में नई चीज़ आनंद देती है, वैसे ही प्रतीत होता है, तो एक लंबे समय तक कैसे हम एब्जॉर्ब करें।
बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, बहुत जो है ये व्यवहारिक प्रश्न है, सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि हम एब्जॉर्ब्ड होते हैं। जैसे अब जैसे जन्माष्टमी का टाइम होता है तो इस तरह का जो पर्व होता है, उत्सव होता है, तो बहुत एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली रहती है उसमें, नहीं सब एब्जॉर्ब्ड होते हैं, इतनी सेवा। तो उसके लिए यही हमें करना है, एक तो जो लोग ज़्यादा एब्जॉर्ब, जो ज़्यादा सेवा में लगे हुए हैं पूर्ण तल्लीनता से, उनकी सेवा में लगे हम, जब उनकी सेवा में लगते हैं तो फिर उनके गुण ही हमारे में आते हैं। लगे जैसे गुरु महाराज हैं और ऐसे भक्त हैं जो आप देख रहे हो कि पूर्ण तल्लीनता से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी हम सेवा करें, उनका एसोसिएशन लें, उनका हम संग लें, और फिर भगवान को प्रार्थना करें। जब इसलिए जप करना बहुत तल्लीनता से जरूरी है, जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना करें, भगवान हमें अपनी सेवा में लगाओ, भगवान हमें अपनी सेवा में लगाओ, क्योंकि भगवान की सेवा जब हमें मिलती है तो बहुत ही अपने आप में आनंददायी है। भगवान की सेवा जब हम करते हैं तो आनंद आता है। तो अगर हमें 24 घंटे भगवान की सेवा मिलती रहे, अब 24 घंटे हम चाहें तो जप कर सकते हैं, लेकिन जप में हमारा मन नहीं लगता, इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये सारा अरेंजमेंट किया है। ये तो असल में तो 24 घंटे हम जपें, नाम जपें, क्या दिक्कत है, लेकिन हमारा मन लग नहीं सकता इतने ये इस वातावरण में, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने दूसरी सेवाएं भी दी हैं। तो कोई ना कोई सेवा अगर हम करते रहें और भगवान से प्रार्थना करें तो धीरे धीरे होगा, है तो डिफिकल्ट, धीरे धीरे होएगा, करे रहें बार 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 बार, असफलता भी मिलेगी। जैसे बच्चा है जब चलना सीखता है तो गिरता भी है, लेकिन कोई भी बच्चा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो हुआ वो एक साल का खड़ा हुआ और भागना शुरू कर दिया, आज तक देखा कोई बच्चा कहीं हुआ, इधर जयबाग में होते हैं नहीं, कहीं नहीं होते, दुनिया में कहीं नहीं होते। कोई भी बच्चा जब चलना सीखता है पहले रिड़ता है फिर खड़ा होता है फिर गिर जाता है, फिर खड़ा हो गए तो फिर जब टाइम से वो जब उसको अभ्यस्त हो जाता है तो कभी भी नहीं गिरता, भागता है, दौड़ता है, स्प्रिंट भी लगाता है, ऐसा कुछ करता है। तो इसी तरह से अभी हम भी जब शुरू शुरू में अभ्यास कर रहे हैं तो कई बार सेटबैक्स भी होंगे, फेलियर्स भी होंगे, फिर उठ के खड़े हो जाना है, फिर चलना है, फिर उठ के खड़े हो जाना है, फिर चलना है। तो ऐसे अभ्यास करते करते एब्जॉर्प्शन होगी और हम देख रहे हैं कि ऐसे डिवोटीज हैं जो एब्जॉर्ब है। गुरु महाराज को देखो 24 घंटे सेवा में एब्जॉर्ब रहते हैं, 24 घंटे कितनी तलीनता से रहते हैं, कोई भी काम कोई भी सेवा कर रहे हैं पूरी तलीनता से कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे होते हैं तो पूरे कंसंट्रेशन से और कहीं ध्यान नहीं होता। तो ऐसे भक्तों की जो ऐसे भक्त हमें हैं उनकी सेवा करें हम। आप तो तलीन हो, आपसे तो हम सीखते हैं प्रभु जी, आप कैसे कह रहे हो, आप दूसरों के लिए पूछ रहे हो और किसी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ कल से शुरू हो जाएगी ना ये, कल से शुरू अध्याय 2 से अध्याय 10 तक यही चर्चा है। बहुत लंबा जवाब देंगे इसका, नारद मुनि जी पूरी कथा कहेंगे और नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की पूरी कथा कहेंगे हम। मौका मिल गया उनको, यही तो है, वेरी गुड। यही तो तभी तो प्रश्न, तभी तो उनकी जो प्रश्न करता है उनकी पिछले श्लोकों में भी प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो आपको भगवान की गुणगान, भगवान की कथा, भगवान के लिए बोलने के लिए कहते हैं वो बड़े यशस्वी हैं। क्योंकि भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर जो जो मटेरियल डिजायर्स हैं, ये जो अग्नि लगी हुई है ये भौतिक बात की जाती है। यहाँ कह रहे हैं ना देखो कि बहुत यशस्वी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे बताया उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं जब ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो वक्ता है वो उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता है कि देखो ये इसके उत्तर से तो सारे के सारे जो हैं। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा आपने मुझसे अतीव श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं जिनमें उनके भक्तों के भी यशों का वर्णन रहता है भक्तों को अत्यंत भाने वाली हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकवादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। ऐसी कथाएं जो है भौतिकवादी जीवन का जो कष्ट है, अतएव नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। अब मैं श्री व्यासदेव को सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो ये बहुत शुभ है, ये इसीलिए अभी आपको बहुत सुंदर कथा आगे सुनने को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा। थैंक यू। हाँ
अभी जैसे कि आपने बोला था कि टीवी को टीवी वगैरह देखना नहीं चाहिए, तो उसमें से उसमें अगर हम अलग से जैसे रामायण लगाते हैं, कृष्णा लगाते हैं, महाभारत लगाते हैं,
अब वो तो ठीक है अगर आप खुद सीडीज लगाते हो या खुद आप कोई पेन ड्राइव या किसी तरह से, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो आप चूज कर रहे हो ना, वो तो आपका है निर्णय। वो वहाँ तो चूज नहीं कर रहे, वो दे रहे हैं आपको, कुछ भी परोस रहे हैं। जैसे अब आपके मुँह में कोई कुछ भी, आप मुँह खुला कर दो, कोई भी डालता रहे खाते रहोगे, ये कॉकरोच डाल दिया, ये चिपकली डाल दी, ये खाते थोड़ा रहोगे आप, ले कानों को ऐसे करते हो, टीवी के आगे रख देते हो, डालते रहो, मूर्खता है ना ये। उन्होंने अपने प्रोग्राम बनाए हैं, अपना उनका उद्देश्य है, आप क्यों सुन रहे हो उसको, आपके लिए थोड़ा बनाया उन्होंने, आपके लिए प्रोग्राम नहीं बनाए उन्होंने, उनको कोई लेना देना नहीं है इस्कॉन के भक्तों से, कोई लेना देना नहीं है, वो तो उनके दुश्मन है, बल्कि आप तो उनकी योजनाओं में बाधा डाल रहे हो। हाँ, आपका प्रचार जो बाधा डाल रहा है उनका कंज्यूमरिज्म में। आप तो कहते हो कि जो पति पत्नी है वो अलग ना हो, आप तो ये कहते हो। अभी मैंने बोला ना लेक्चर में कि हमारा बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे शास्त्रों में तो कोई ये तलाक का पर्यायवाची शब्द ही नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं पति पत्नी अलग रहे, इकट्ठे रहने का क्या मतलब है। हमारे इतने मकान बनाए हैं, इतने फ्लैट बनाए हैं, वो अगर इकट्ठे रहेंगे तो फिर हमारे फ्लैट कैसे बिकेंगे। इतनी कारें बनाई हैं हमने, इतने मॉडल्स बनाए हैं हमने, एक मॉडल फीमेल्स के लिए अलग बनाया है, जो फीमेल्स वाली गाड़ी अलग बनाई है, वो कैसे बिकेंगी अगर इकट्ठे रहेंगे तो। इतनी सारी चीजें बना रहे हो, बिकेंगी कैसे, आप कह रहे हो ज्वाइंट फैमिली करो, और हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल इकट्ठे नहीं रहना चाहिए, एक एक व्यक्ति के पास दो दो गाड़ियां होनी चाहिए, हम तो ये प्रचार कर रहे हैं, आप उल्टा प्रचार कर रहे हो, आप कह रहे हो गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, कैसे उनका धंधा चलेगा प्रभु जी? ठीक है, तो उनकी जो चीजें हैं वो नहीं हमें सुननी, उनके जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम षड्यंत्र है हमारे भक्ति को खत्म करने के, वो षड्यंत्र में नहीं आना। आप भी बाकी कुछ भी देखो, आप प्रभुपाद जी की सीरीज देखो, देखो ना, उससे तो भक्ति बढ़ेगी हमारी, है ना। लेकिन एक और भी वैसे सर्च की गई है, ये रिसर्च बता रहा हूं आपको, कि जो किताब पढ़ना है ना, किताब पढ़ना जो है वो बेटर है इसके मुकाबले कि आप कोई चीज देखते हो। ये आपको समझना चाहिए, ये रिसर्च की गई है, क्योंकि किताब पढ़ने में आपकी कंसंट्रेशन बनती है, कंसंट्रेशन होती है, आप उसको उसमें पैसिव होते हो, आप जब सामने चीज हो रही है तो पैसिव होते हो, आप इतने एक्टिव नहीं होते, तो वो चीज इतनी सिंक इन नहीं करती। ये भी पॉइंट आप समझो। कई लोग जैसे कहते हैं कि आप जी भगवत गीता का क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करते हो किताबों का, आजकल तो जमाना सीडी का है, आप सीडी बांटो ना, आप सीडी बांटो बदोगे थे। नहीं, गलत है ये किताबों का जो लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, इसी कारण से वो डल होते चले जा रहे हैं। पता आपको, दिमाग उनका डल होता चला जा रहा है, कंसंट्रेशन खत्म होती चली जा रही है और मेंटल प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हो तो आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आप ऐसे पढ़ नहीं सकते। ये भी एक पॉइंट है, समझ गए गोपाल? तो किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, किताबों का जो वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आपने पढ़ी है, मान लो भागवतम पढ़ लिया है या प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ लिया है, तो फिर आप देख भी सकते हो, फिर वो री इन्फोर्स करेगा, किताबों का आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। हाँ जी,
धन्यवाद प्रभु जी। जैसे कोई आम व्यक्ति टेलीविजन इसलिए देखता है, उसकी एंटरटेनमेंट की इच्छा होती है, तो उसको पूरा करने के लिए वो टीवी देखता है। तो एक भक्त ये किस प्रकार से एंटरटेनमेंट की इच्छा सेटिस्फाई कर पाता है? जो व्यक्ति जैसे घर पे रहता है तो मतलब से कुछ समय ऐसा होता है वो खाली लगता है या बहुत बोर हो रहा है तो टीवी चला लेता है, तो एक भक्त किस प्रकार से सब इच्छाओं को जो है सेटिस्फाई कर पाता है और भक्ति में अच्छे से रह पाता है बिना टीवी देखे?
हाँ, तो ये समझना है ना, क्योंकि अगर अगर हम ध्यान से भक्ति में लगे हुए हैं तो भक्ति तो एंटरटेनमेंट ही है। भक्त तो 24 घंटे एंटरटेनमेंट करते हैं, और करते क्या है भक्तों का, तो 24 घंटे वो तो है ही हॉलीडे पे, हम तो हॉलीडे पे हैं, काम तो छोड़ चुके हैं। मैंने 92 से हॉलीडे पे हूँ, 92 से मैं तो काम कर ही नहीं रहा, क्या कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि भक्ति जो है तो एंटरटेनमेंट है, हमें समझना है ना, उसमें एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपके दिमाग को खराब करता है, आप मजबूरी में करते हो। लोगों को हॉलीडे क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, वो करना नहीं चाहते, लेकिन सैलरी चाहिए, पेट का सवाल है, पेट को भरना है, उसके लिए वो बेचारे जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, बॉस की डांट खाएंगे, गालियां सुनेंगे उससे, क्योंकि पैसा चाहिए, सब कुछ करेंगे, सुनना नहीं चाहते, इसलिए उनको हॉलीडे चाहिए, और हॉलीडे के लिए जाते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, उससे क्योंकि परेशान होते हैं। भक्त का तो वो तो है ही एंटरटेनमेंट में, और एंटरटेनमेंट क्या चाहिए? जैसे चैंटिंग है, ये भी एंटरटेनमेंट है, प्रभुपाद जी किताबें हैं सब, तो अगर आपको लगता है कि हाँ उस तरह की कोई एंटरटेनमेंट है, तो आप प्रभुपाद जी की जैसे चीज़ें अगर आपको टेलीविजन में ही देखता है कि एंटर, तो प्रभुपाद जी कोई सीरीज हैं कुछ है वो एंटरटेनमेंट करो, और अगर आपका घूमने का मन है तो वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, मतलब वो सारी चीज़ें भक्त करते हैं, ऐसी बात थोड़ा है। जो लोग एंटरटेनमेंट करने जाते हैं, मसूरी जाएंगे, शिमला जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और फिर वहीं के वहीं दुखी जाते हैं और दुखी वापस लौटते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से अगर आप जाओ दुखी मायापुर, आओगे तो सुखी हो गया, इफेक्ट है, कई लोगों का अनुभव वो बताएंगे आपको, बहुत दुखी से जब मायापुर गए, भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली उनको और सुखी हो गया, वो कायाकल्प हो गया, उनका जीवन ही बदल गया। तो ये एंटरटेनमेंट, हम तो रियली ये तो एंटरटेनमेंट है, वो तो वही है, वो तो ऐसे है जैसे यहाँ से बाहर उठाया और यहाँ रख दिया, एक एक्टिविटी कर रहे हैं भौतिकता में ही, सेंसेस को एजिटेट कर रहे हैं एक एक्टिविटी से, फिर दूसरी एक्टिविटी से फिर सेंसेस को एजिटेट कर रहे हैं, फर्क क्या है? और जब हम भक्ति करते हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं, तो सेंसेस काम होती है ना, वो है असली, वो रिलैक्सेशन, असली तो रिलैक्सेशन वो है। अब जब करने बैठोगे ध्यान से, तो आपकी इंद्रियां सारी काम डाउन हो जाएंगी, एजिटेशन कम होना शुरू हो जाएगा, वो तो एजिटेशन ही है। शराब पी के रिलैक्स करते हैं, मूर्ख शराब पी के रिलैक्सेशन है, शराब वो एजिटेट कर रहा है तुम्हारी सेंसेस को, पागल है वो, तुम सोचते हो कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, रिलैक्स ना, सिगरेट से रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है पागल, तू फिर अपनी इंद्रियों को एजिटेट कर रहा है, इंद्रियां एजिटेट है ना, एजिटेटेड है इंद्रियां, उनको काम डाउन करना है ना, रिलैक्सेशन का मतलब रिलैक्स करो, तो रिलैक्स कहां से कर रहे हो तुम, तो ओवर एजिटेट कर रहे हो उनको, तो आप बताओ ना उनको असली एंटरटेनमेंट बताओ, वो एंटरटेन थोड़ा कर रहे हैं। जैसे पागल आदमी होता है, पागल आदमी क्या एंटरटेनमेंट करेगा, वो है ना, वो उनका उनको उनको सही सेंस नहीं है, सेंस दो उनको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जरूरत है, सबको जरूरत है, सब दुखी हैं आज। सुसाइड रेट जो है बढ़ता चला जा रहा है सारी दुनिया में, कौन सुसाइड करना चाहता है बताओ, कोई सुसाइड खुशी खुशी करता है क्या? कितना बड़ा पागलपन है, जानवर भी सुसाइड नहीं करता। कभी सुना हमने जानवर को सुसाइड करते हुए? डिस्कवरी चैनल में दिखाया हूं, है? कभी नहीं होता ना, जानवर कभी नहीं करता। वो दिखाया वो डिस्कवरी चैनल में कि वो एक बंदर था जंगल के अफ्रीका में रहता था, वो बंदरिया ने डिच कर दिया उसको। उसने क्या किया, अफ्रीका के जंगल में सबसे बड़ा जो बड़ का पेड़ था वो वहां पे चढ़ा और छलांग मार दी। सुना डिस्कवरी चैनल में दिखाया कभी? कभी नहीं होता ऐसा। और यहां देखो जी, 12th में नंबर थोड़े से कम आ गए और जी गले में फांसी लगा ली। पागल कौन है? पागल हो रहे लोग, आप उनके हो, आपके ऊपर ही जो है सारा वो है दामोदर। आप चाहो तो उनको बचा सकते हो, चाहो अगर आप हृदय में कंपैशन नहीं है तो मरने दो, है तो हमारे ही भाई। हम बीज प्रदा पिता, भगवान तो सबके पिता है, हमारे तो भाई हैं वो। अगर हमारे अंदर कंपैशन नहीं है, दया नहीं है तो मरने दो उनको। कितने मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं बताओ, कितना और बढ़ता चला जा रहा है सुसाइड रेट जो है परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो आप प्लीज उनके पास जाओ, दया से उनको पकड़ो और उनको समझाओ प्यार से। प्रभुपा जी की ये प्रभुपा जी के पोपट जो है, यही बताने और कुछ नहीं करना, यही समझा दो, बोल दो उनके आगे जाके, किताब ले जाओ पढ़ लो। प्रभुपा जी ने सब कुछ दिया है किताबों में, सब कुछ, सिर्फ हमें पढ़ना है, बस पढ़ के उनको बता देना है, देखो वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इसलिए बांटनी है किताबें। खैर आपका मंदिर तो बहुत आगे है, ऐसी बात नहीं है, आपका मंदिर तो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर से कम्पीट करता है हर चीज में, वो इतना बड़ा मंदिर है। लेकिन और देयर इज ऑलवेज स्कोप, आगे बढ़ने का हमेशा स्कोप है। ठीक है प्रभु जी, तो एंटरटेनमेंट यही असली एंटरटेनमेंट है, समझना है इसी चीज को। हमें आदत पड़ी हुई है ना, जैसे शराबी को आदत पड़ी होती है, शराबी को पता है ये मेरे लिए खराब है, कल मैं उल्टियां करूंगा, मारूंगा पत्नी को इसको पीने के बाद, फिर भी जब ही शाम होती है, जब रात को पिएगा वो, जब ये काम करेगा तो कहेगा कल से मैंने नहीं पीनी, उपरण कर दे, कल से मैं नहीं पीऊंगा इसको। जैसे ही शाम होगी, आदत है ना, फिर वही शराब, वही बॉटल, वही पीना शुरू कर लेगा ना चाहते हुए। ऐसी हमें भी आदत पड़ गई है, ऐसे ही हम लोगों को भी आदत पड़ी हुई है। ठीक है, जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, पंजाबी विभाग के भक्तों की जय हो, हरे कृष्णा।